एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सुनते हैं हम सब, जिस पर गर्मा गर्म बहसें भी होती हैं, लेकिन शायद उतनी ही उलझन भी है उसको लेकर। शब्द है समाजवाद।
बिल्कुल।
और ये जो उलझन है ना, इसको सुलझाने में आज हमारी मदद करेंगे माइकल न्यूमन। हम उनकी दो बहुत ही अहम किताबों, सोशलिज्म अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लोरेशन और सोशलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के जो सारांश हैं, उनके आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं।
अच्छा।
और ये किताबें समाजवाद की पूरी कहानी को बड़े ही दिलचस्प तरीके से सामने रखती हैं।
लेकिन यही सवाल उठता है कि आज ही क्यों समाजवाद पर बात करना इतना जरूरी है?
देखे ना अपने आसपास, दुनिया में ये जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, बार बार ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, फिर पर्यावरण की चिंताएं।
हाँ बिल्कुल। ये सब कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि भाई जो अभी सिस्टम चल रहा है, मतलब पूंजीवाद, क्या वही एक अकेला रास्ता है?
सही बात है।
और समाजवाद, चाहे अब वो किसी भी रूप में हो, वो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। तो बस आज कोशिश यही है कि इस मुश्किल से देखने वाले विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए।
और इसमें गाइड हैं हमारे माइकल न्यूमन। आप बता रही थीं कि वो प्रोफेसर एमेरिटस हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में।
जी हाँ, राजनीति के प्रोफेसर और दशकों का अनुभव है उनका पॉलिटिकल थियोरी, यूरोपियन पॉलिटिक्स, और खासकर ये जो समाजवादी आंदोलन रहे हैं ना, उनको बहुत गहराई से स्टडी किया है उन्होंने।
हाँ, और जैसा आपने कहा, उनकी खास बात ये भी है कि वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं है, मतलब उन्हें असल दुनिया की राजनीति की भी गहरी पकड़ है।
बिल्कुल।
वो समाजवाद को ना तो एकदम हीरो बना देते हैं, ना ही विलन।
सही।
वो बस फैक्ट्स देखते हैं, सबूत देखते हैं, और उसके आधार पर अपनी बात रखते हैं। बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है उनका।
एकदम। और एक और बात जो उनके नजरिए को अहम बनाती है वो ये है कि वो लिख रहे हैं कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद के दौर में।
अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, तो उससे क्या हुआ कि उन पर वो दबाव नहीं था कि किसी एक खेमे का पक्ष लेना है। वो बिना किसी दबाव के समाजवाद के पूरे इतिहास को, उसके उतार चढ़ाव को देख पाए। वो समझते हैं कि समाजवादी आंदोलनों के इरादे क्या थे, लेकिन जहां कमियां रहीं उन पर भी उंगली रखने से हिचकते नहीं। बहुत ही क्रिटिकल लेकिन सहानुभूति वाला नजरिया है।
तो फिर इस नजरिए से इन किताबों में न्यूमैन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं वो?
देखिए, उनका मकसद है समाजवाद के आसपास जो एक रहस्य का, या कह लें कि गलतफहमियों का जाल बुना हुआ है ना,
हाँ,
उसको हटाना। वो दिखाना चाहते हैं कि समाजवाद असल में है क्या, न कि वो जो इसके दुश्मन कहते हैं और न ही वो जो इसके बिल्कुल आंख बंद करके तारीफ करने वाले समर्थक दावा करते हैं। ये किताब बेसिकली हर उस इंसान के लिए है जो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री या फिर आज की दुनिया में जो बराबरी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक जस्टिस की बहसें चल रही हैं, उनको समझने में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता है।
तो इसका मतलब, जो आपने पहले भी कहा, कि किताब का निचोड़ एक तरह से ये है कि समाजवाद कोई एक पत्थर की लकीर जैसा सिद्धांत नहीं है।
बिल्कुल सही। वो इसे एक परिवार की तरह देखते हैं, विचारों और आंदोलनों का एक बड़ा कुनबा।
अच्छा।
इस परिवार के सदस्य अलग अलग दिख सकते हैं, अलग अलग बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी धागे हैं जो सबको जोड़ते हैं।
जैसे
आज में न्याय की मांग और ये सोच कि जो उत्पादन के साधन हैं, मतलब फैक्ट्री, जमीन, रिसोर्सेज, इन पर सबका हक होना चाहिए, या कम से कम उन पर सबका कंट्रोल हो।
ये दिलचस्प है, एक परिवार वाली बात। तो ये परिवार बना कैसे? कहानी शुरू कहां से होती है इसकी?
ये कहानी शुरू होती है वहां से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का धुआं और शोर था।
अच्छा, औद्योगिक क्रांति।
हाँ, जहां समाजवाद ने पहली बार कह सकते हैं आकार लेना शुरू किया, और फिर ये सफर बढ़ता है मार्क्स के विचारों तक, फिर सोशल डेमोक्रेसी के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, रूस की क्रांति, फिर तीसरी दुनिया के देशों ने अपने अपने रास्ते अपनाए, और आज के दौर में जो नई बहसें चल रही हैं, वहां तक ये कहानी पहुंचती है।
तो इस पूरी लंबी यात्रा में न्यूमैन का मुख्य तर्क, या कहूं कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है?
उनका जो मूल तर्क है वो ये है कि पूंजीवाद जो सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसी बेसिक खामियां हैं जो गैर बराबरी और शोषण को जन्म देती ही देती हैं, और समाजवाद अपने अलग अलग रूपों में इन्हीं खामियों को दूर करने का एक सामूहिक कलेक्टिव प्रयास रहा है। और इसमें ये बात बहुत अहम है कि संसाधनों पर, रिसोर्सेस पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो।
अच्छा।
न्यूमैन मानते हैं कि ये जो बुनियादी आइडिया है ना, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है, भले ही दुनिया में ऐसा लगता हो कि भाई मार्केट इकोनॉमी जीत गई है।
सही, तो चलिए फिर इस परिवार के कुछ अहम सदस्यों से मिलते हैं। कहां से शुरू करें?
शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से।
हाँ, उन शुरुआती समाजवादियों से जिन्हें बाद में मार्क्स ने शायद यूटोपियन कहा था, कल्पनावादी।
हाँ बिल्कुल, ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति ने शहरों में भयानक गरीबी फैला दी थी, फैक्ट्रियों में काम करने के हालात बहुत ही अमानवीय थे और समाज में अमीर गरीब की खाई बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी।
उस माहौल में फिर ये विचारक आए, सेंट साइमन, फूरियर, रॉबर्ट ओवेन।
जी, और उनका विश्वास था कि समाज को तर्क और नैतिकता, मतलब रीजन और मोरालिटी के बेसिस पर बेहतर तरीके से दोबारा बनाया जा सकता है।
अच्छा।
उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सवाल उठाए, कोऑपरेटिव मॉडल यानी मिलजुल कर काम करने के तरीके सुझाए। ये एक तरह से उस नाइंसाफी के खिलाफ एक गहरी नैतिक आवाज थी।
लेकिन फिर आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, और वो कहते हैं कि भाई सिर्फ ये अच्छी अच्छी बातें करने से, मतलब नैतिक अपील से काम नहीं चलेगा।
हाँ बिल्कुल,
समाजवाद को एक वैज्ञानिक बेस चाहिए। अब ये वैज्ञानिक, इसका क्या मतलब था वहां?
देखिए, उनका पॉइंट ये था कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि देखो पूंजीवाद कितना बुरा है। नहीं, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये क्यों बुरा है, कैसे काम करता है, और कि इसका अंत होना एक तरह से तय है, सिस्टम के अंदर ही लिखा है।
ओके।
और फिर उन्होंने वो सिद्धांत दिए जैसे सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य।
हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब वो मुनाफा जो मालिक मजदूर की मेहनत से निकालता है।
बिल्कुल। फिर क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष की बात की, मालिक और मजदूर वर्ग के बीच का जो टकराव है, और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म यानी इतिहास
कैपिटल, वो इसी एनालिसिस पर बेस्ड है।
हाँ बिल्कुल। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पूंजीवाद अपने ही अंदरूनी विरोधाभासों से, अपने कॉन्ट्रडिक्शन से ढह जाएगा। और एक क्रांति होगी जिसके जरिए साम्यवाद आएगा, एक ऐसा समाज जहां कोई वर्ग नहीं होगा। मार्क्स का असर इतना जबरदस्त रहा कि समाजवाद की आगे की पूरी कहानी को आप उनके असर के बिना समझ ही नहीं सकते।
लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं चली मार्क्स के बाद, समाजवाद के रास्ते जैसे बटने लगे।
हाँ,
एक बड़ी बहस छिड़ गई कि समाज बदलेगा कैसे, क्या क्रांति ही एकमात्र रास्ता है या धीरे धीरे सुधारों से भी बात बन सकती है।
बिल्कुल, यूरोप में समाजवादी पार्टियां बनी, वो एकजुट भी हुई, एक संगठन बनाया उन्होंने, दूसरा इंटरनेशनल, लेकिन जल्दी ही उनमें मतभेद बहुत गहरे हो गए।
अच्छा।
एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि भाई मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरह सच नहीं हो रही, मजदूरों की हालत थोड़ी सुधर रही है, उन्हें वोट का अधिकार मिल रहा है कई जगह, तो क्यों ना हम क्रांति का इंतजार करने के बजाय इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर लड़े, अच्छी मजदूरी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, काम के बेहतर हालात के लिए। इसे कहा गया रिविजनिज्म या संशोधनवाद।
और यहीं से वो दो मेन धाराएं बन गईं, एक जो कहती थी क्रांति करनी पड़ेगी, सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा।
हाँ।
और दूसरी जो कहती थी कि नहीं, इसी सिस्टम में रहकर पार्लियामेंट के रास्ते, सुधारों के जरिए समाजवाद लाया जा सकता है।
हाँ, मोटे तौर पर यही दो रास्ते बन गए। और यहीं से आगे चलकर जो क्रांतिकारी साम्यवाद था और जो विकासवादी या एवोल्यूशनरी सोशल डेमोक्रेसी थी, उनके रास्ते अलग हो गए। एक ने चुना, जैसा आपने कहा, बैरिकेड, और दूसरे ने चुना बैलेट बॉक्स।
और फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया, 1917 रूस की क्रांति।
हाँ।
इसने तो समाजवाद का मतलब ही बदल दिया कई लोगों के लिए।
यकीनन, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को लिया और उन्हें रूस के जो पिछड़े हालात थे उस हिसाब से ढाला। उन्होंने वो वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी क्रांतिकारियों का एक छोटा अनुशासित ग्रुप जो क्रांति को लीड करेगा। लेकिन जो सोवियत मॉडल बना लेनिन और खासकर स्टालिन के दौर में, वो मार्क्स की कल्पना से बहुत अलग था।
क्या मतलब, कैसे अलग था?
लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। तानाशाही आई, मानवाधिकारों का बुरी तरह दमन हुआ, वो एक पार्टी का राज बन गया।
और इस सोवियत मॉडल का दुनिया पर असर कैसा रहा?
असर बहुत गहरा था, और जैसा मैंने कहा, दो तरफा था। एक तरफ इसने दुनिया भर के कई उपनिवेशवाद विरोधी और वामपंथी आंदोलनों को प्रेरणा दी।
हाँ।
लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो तानाशाही वाली छवि बनी, उसने समाजवाद शब्द को ही कई लोगों के लिए डर और नफरत का सिंबल बना दिया, और इसने जो लोकतांत्रिक समाजवादी थे उन्हें भी मजबूर किया कि वो खुद को इससे बिल्कुल अलग करें।
तो ये तो हुई सोवियत मॉडल की बात। इसके पैरेलल खासकर पश्चिमी यूरोप में दूसरी धारा क्या कर रही थी, सामाजिक लोकतंत्र वाली?
हाँ बिल्कुल, वहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोशल डेमोक्रेसी का काफी उभार हुआ। स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियन देश इसके क्लासिक उदाहरण है, या ब्रिटेन में एटली की सरकार जिसने NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस शुरू की, सबके लिए मुफ्त इलाज, वो इसी दौर की देन है।
ये सोशल डेमोक्रेसी सोवियत मॉडल से बुनियादी तौर पर कैसे अलग थी?
ये क्रांति नहीं चाहते थे, ये सुधार चाहते थे। इनका लक्ष्य पूंजीवाद को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसे एक तरह से टेम करना था, पालतू बनाना था।
अच्छा, कैसे?
मिलीजुली अर्थव्यवस्था रखकर, मतलब सरकारी कंपनियां भी हों, प्राइवेट भी, एक मजबूत वेलफेयर स्टेट बनाकर, जिसे कहते हैं पालने से कब्र तक सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों के अधिकार मजबूत करके, और सबसे जरूरी, ये सब डेमोक्रेसी के दायरे में रहकर करना चाहते थे।
मतलब पूंजीवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करना, बस उसकी जो बुराइयां हैं उनको कम करना, उसे ज्यादा मानवीय बनाना।
बिल्कुल, यही उनका लक्ष्य था।
लेकिन फिर 70 के दशक के बाद इन्हें भी दिक्कतें आने लगी?
हाँ बिल्कुल, आर्थिक संकट आए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, और फिर वो नियो लिबरलिज्म की लहर आई, यानी बाजार को ज्यादा खुली छूट देने की विचारधारा। इसने सोशल डेमोक्रेसी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी।
अच्छा, ये तो हुई यूरोप की बात। यूरोप के बाहर जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जो नए नए आजाद देश थे, वहां समाजवाद ने क्या शक्ल ली, जिसे तीसरी दुनिया का समाजवाद भी कहते हैं?
वहां देखिए, समाजवाद जुड़ा हुआ था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से और नेशन बिल्डिंग से। इन देशों के नेताओं को समाजवाद इसलिए अपील करता था क्योंकि ये साम्राज्यवाद की आलोचना करता था, और ये एक रास्ता सुझाता था जिससे राज्य के नेतृत्व में तेजी से विकास किया जा सके।
तो क्या ये बिल्कुल सोवियत मॉडल जैसा था?
नहीं, पूरी तरह नहीं। यहाँ अक्सर मार्क्सवाद, लेनिनवाद के तत्वों के साथ साथ वहाँ की जो लोकल परंपराएं थीं और जो राष्ट्रवादी भावनाएं थीं, उनका एक मिक्सचर देखने को मिला।
अच्छा, कोई उदाहरण?
जैसे तंजानिया में जूलियस नेरेरे का उजामा, या अफ्रीकी समाजवाद का विचार था, या क्यूबा का मॉडल, चीन का अपना रास्ता। इन सब का जोर अक्सर राष्ट्रीय आजादी और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ज्यादा था, बजाय कि यूरोप वाले क्लास स्ट्रगल पर।
फिर 60 और 70 के दशक में एक और हलचल दिखती है, न्यू लेफ्ट या नई वामपंथ का उभार। ये कौन लोग थे?
ये ज्यादातर युवा पीढ़ी थी, और ये दोनों से निराश थे, सोवियत संघ की जो तानाशाही थी उससे भी, और जो पश्चिमी सोशल डेमोक्रेसी थी उसके ढीलेपन और ज्यादा भौतिकवादी हो जाने से भी।
अच्छा, तो ये क्या अलग चाहते थे?
इन्होंने नए मुद्दे उठाए, जैसे फेमिनिज्म, एंटी रेसिज्म, पर्यावरण की चिंता और लोगों की ज्यादा भागीदारी वाला लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि समाजवाद ऊपर से थोपा न जाए, बल्कि नीचे से आए, आम लोगों की भागीदारी से।
और आज के समय में कंटेम्प्रेरी समाजवाद कहाँ खड़ा है, खासकर 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया उसके बाद?
हाँ, वो एक बड़ा झटका था। लगा कि भाई समाजवाद की कहानी शायद खत्म हो गई, इतिहास का अंत जैसी बातें होने लगी।
हाँ, सुना है।
फिर वो थर्ड वे या तीसरा रास्ता आया, जैसे टोनी ब्लेयर या बिल क्लिंटन का, जिसने बाजार को ज्यादा गले लगाया। लेकिन फिर 2008 का जो ग्लोबल आर्थिक संकट आया ना,
उसने सब बदल दिया।
उसने फिर से पूंजीवाद पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए, और उसके बाद हमने देखा ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसे आंदोलन हुए, बर्नी सैंडर्स अमेरिका में, जेरेमी कॉर्बिन ब्रिटेन में। ऐसे नेताओं का उभार हुआ जिन्होंने समाजवादी कहलाने से परहेज नहीं किया।
तो क्या आज का समाजवाद वापस पुराने मॉडल की तरफ जा रहा है, वही राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था?
नहीं, न्यूमैन के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज का जो जोर है वो ज्यादा है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर, कर्मचारियों और समुदाय की ओनरशिप पर, वर्कर एंड कम्युनिटी ओनरशिप, बढ़ती आर्थिक असमानता से कैसे निपटा जाए इस पर, और क्लाइमेट क्राइसिस, पर्यावरण संकट, इको सोशलिज्म जिसे कहते हैं, ये 20वीं सदी के सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल से काफी अलग दिखता है।
तो ये पूरी जो कहानी हमने सुनी, इसके कुछ बड़े सबक या कहें कि की थीम्स क्या निकलते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ है, जैसा आपने बार बार कहा है, कि समाजवाद का कोई एक चेहरा नहीं है, ये तो बहुरूपिया है।
बिल्कुल,
सेंट साइमन के वो आदर्शवादी विचारों से लेकर स्वीडन का वेलफेयर स्टेट और आज का ये इको सोशलिज्म, कितने अलग अलग रूप हैं, और शायद यही इसकी ताकत भी है कि ये हर दौर में हर जगह के हिसाब से खुद को बदल लेता है, अडेप्ट कर लेता है।
हाँ, और दूसरा बड़ा सबक है सिद्धांत और व्यवहार के बीच का जो टेंशन है, जो तनाव। समाजवाद के आदर्श हमेशा बहुत ऊंचे रहे हैं, बराबरी, भाईचारा, न्याय, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के जो तरीके अपनाए गए वो अक्सर मुश्किल भरे रहे और कभी कभी तो, जैसा सोवियत केस में देखा, खतरनाक भी साबित हुए।
सही बात है। ये तनाव तो हमें शायद भारत में भी कई आंदोलनों में देखने को मिलता है, जहां इरादे नेक होते हैं पर नतीजा कुछ और निकलता है।
बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है पूंजीवाद की लगातार आलोचना और विकल्पों की तलाश। समाजवाद की जड़ में हमेशा से पूंजीवाद से पैदा होने वाली समस्याएं रही हैं, गैर बराबरी, शोषण और अब तो पर्यावरण का विनाश भी। और न्यूमन कहते हैं कि जब तक ये समस्याएं रहेंगी तब तक पूंजीवाद के विकल्पों की तलाश भी जारी रहेगी, चाहे हम उसे कोई भी नाम दें, और ये आलोचना आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है।
चौथा अहम मुद्दा है लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था का रिश्ता। क्या सच्चा पॉलिटिकल लोकतंत्र बिना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के संभव है?
बड़ा सवाल है ये।
और क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था अलग अलग राजनीतिक विचारों, मतलब पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के साथ चल सकती है? सोवियत अनुभव तो कहता है नहीं,
सही।
पर सोशल डेमोक्रेसी कहती है हाँ।
सही।
ये बहस आज भी जिंदा है कि भाई सत्ता को एक जगह केंद्रित किए बिना आर्थिक न्याय कैसे लाया जाए।
और पांचवा के इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद इतनी सारी विफलताएं भी रहीं, फिर भी समाजवाद के जो मूल विचार हैं वो आज भी क्यों रेलेवेंट लगते हैं? शायद इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि जो समस्याएं हैं, गैर बराबरी, अन्याय, क्लाइमेट चेंज, वो आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, और समाजवाद के जो बुनियादी मूल्य हैं जैसे बराबरी, कम्युनिटी, सबकी भलाई, वो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें एक नैतिक दिशा, एक मॉरल कंपस देते हैं।
न्यूमन के विश्लेषण से कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें शायद हमें याद रखना चाहिए, है ना? जैसे कोट्स या मुख्य विचार।
हाँ बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम हैं। पहला तो यही जो हम कह ही चुके हैं कि समाजवाद कोई एक सिद्धांत नहीं बल्कि संबंधित विचारों का एक परिवार है। इसे याद रखने से फायदा यह है कि हम समाजवाद शब्द सुनते ही किसी एक परिभाषा में उसे कैद करने की कोशिश नहीं करेंगे।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मुझे बहुत गहरी लगी, पूंजीवाद जो व्यवस्थित गैर बराबरी और शोषण पैदा करता है, उसका हल सिर्फ सामूहिक कार्रवाई और लोकतांत्रिक नियंत्रण से ही हो सकता है। न्यूमन का कहना है कि ये समाजवादी सोच आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी मार्क्स के टाइम में थी। मतलब प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है।
विभाजन लक्ष्य पर उतना नहीं था जितना उसे पाने के रास्ते पर था, यानी चुनावों का रास्ता मतपेटी अपनाना या क्रांति का रास्ता बैरिकेड। इसी वजह से समाजवाद शब्द से जुड़े नतीजे इतने अलग अलग रहे हैं, कहीं वेलफेयर स्टेट बना तो कहीं तानाशाही आ गई।
चौथी बात थोड़ी दुखद भी है लेकिन सच है। 20वीं सदी के समाजवाद की त्रासदी ये थी कि इसका नाम सोवियत संघ की तानाशाही से इस कदर जुड़ गया कि इसके अंदर जो गहरी लोकतांत्रिक और मानवीय धाराएं थीं वो छुप गईं।
हाँ, मतलब एक बुरे मॉडल ने पूरी विचारधारा को ही बदनाम कर दिया एक तरह से।
और पांचवीं, जो आज के लिए शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, 21वीं सदी में समाजवाद का जो नया उभार दिख रहा है वो पुरानी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं को वापस लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि आज के पूंजीवाद की जो साफ साफ नाकामियां हैं, बढ़ती गैर बराबरी, पर्यावरण संकट, लोकतंत्र का कमजोर होना, उनका जवाब है।
बिल्कुल, ये भविष्य की तरफ देख रहा है, अतीत की नतल नहीं करना चाहता। तो ये सब हमने समझा, इतिहास देखा, विचार देखे। अब सवाल ये है कि इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है?
देखिए, सबसे पहला और सीधा फायदा तो यह है कि हमारी पॉलिटिकल लिटरेसी बेहतर होती है, हमारी राजनीतिक समझ बढ़ती है।
कैसे?
अब जब कोई नेता या कोई न्यूज चैनल किसी पॉलिसी को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहता है तो हम तुरंत उसे मान नहीं लेंगे, हम उसके पीछे के इतिहास को, उसके अलग अलग मतलबों को थोड़ा समझ पाएंगे। हम सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा कौन सा वाला समाजवाद, स्वीडन वाला या वेनेजुएला वाला?
हाँ, ये फर्क करना आ जाएगा।
दूसरा, हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकते हैं, हमारी नागरिक भागीदारी बेहतर हो सकती है। जैसे मान लीजिए अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात हो रही है, या सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने की, या ट्रेड यूनियनों को अधिकार देने की।
तो हम उसे सिर्फ एक लेबल चिपकाकर हाँ या ना नहीं कहेंगे। हम सोच सकते हैं, क्या इससे सच में बराबरी बढ़ेगी, क्या इससे लोगों का लोकतांत्रिक नियंत्रण मजबूत होगा, या कहीं ये सिर्फ सरकार की ताकत तो नहीं बढ़ा रहा।
तीसरा, ये हमें दुनिया की घटनाओं को एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखने में मदद करता है, चाहे वो यूरोप का वेलफेयर स्टेट हो, या लैटिन अमेरिका के आंदोलन हो, या भारत में ही आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों की नीतियां हों, हमें उनके पीछे की सोच और इतिहास की एक समझ मिलती है।
चौथा, ये हमें विचारधारा के जो लेबल्स होते हैं उनके पीछे झांकने में मदद करता है। समाजवाद सुनते ही या तो डर जाने या बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाने के बजाय हम थोड़ा रुककर विश्लेषण कर सकते हैं। किस तरह का समाजवाद, किसके लिए, कैसे लागू होगा, ये सवाल पूछना सीख जाते हैं।
और आखिर में शायद सबसे जरूरी, ये हमें ये सोचने का हौसला देता है कि चीजें अलग भी हो सकती हैं। इट गिव्स अस अ फ्रेमवर्क फॉर इमेजिनिंग अल्टरनेटिव्स।
हाँ,
ये दिखाता है कि आज जो सिस्टम है वही हमेशा से नहीं था और जरूरी नहीं कि वही हमेशा रहे। बदलाव की एक बेहतर दुनिया की सोच का एक लंबा, कॉम्प्लेक्स, उतार चढ़ाव भरा इतिहास है जिससे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का अगर निचोड़ निकालें, फाइनल टेकअवेज क्या होंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि समाजवाद एक बहती हुई नदी है, कोई ठहरावा तालाब नहीं। इसमें क्रांति भी है, सुधार भी है, इसमें तानाशाही भी है, लोकतंत्र भी है, और इन अलग अलग धाराओं के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है।
और मेरे लिए ये भी कि समाजवाद के जो ऊंचे आदर्श रहे हैं, बराबरी, समुदाय, न्याय, और उन्हें पाने के लिए जो रास्ते अपनाए गए, उनके बीच हमेशा एक कश्मकश, एक तनाव रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है, तो कभी कभी सत्तावादी बन जाना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। और ये दोनों पहलू शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे दिलचस्प ये लगा कि कैसे समाजवाद का जो बिल्कुल कोर आइडिया है कि पूंजीवाद की समस्याओं का हल हमें मिलकर सामूहिक रूप से खोजना होगा, वो आइडिया बार बार नए नए रूपों में सामने आ जाता है। भले ही पुराने मॉडल फेल हो गए हों, पर ये विचार जो है ये हार मानने को तैयार नहीं लगता।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, यही थी कि कैसे एक ही समाजवाद शब्द ब्रिटेन की NHS जैसी अच्छी चीज से भी जुड़ा है और स्टालिन के गुलाग जैसी भयानक चीज से भी। ये न्यूमैन की वो विविध परिवार वाली बात को बिल्कुल सही साबित करता है। सच में एक शब्द, लेकिन कितने, मतलब कितने चेहरे।
तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं अंत में। समाजवाद के इस लंबे, विविध और मिले जुले इतिहास को देखते हुए आज की जो बिल्कुल नई चुनौतियां हैं हमारे सामने, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा या भविष्य में आने वाली महामारियां, इनके लिए एक प्रासंगिक, रेलिवेंट समाजवाद का रूप कैसा हो सकता है? क्या पुराने सबक हमारे कुछ काम आएंगे या हमें पूरी तरह नए सिरे से सोचने की जरूरत है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।